मध्य नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के लिए अस्थायी कार्य वीजा यानी टेम्परेरी वर्क वीजा शीघ्र मिल सकेगा और उस पर पैसे भी कम लगेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन एक आसान वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का वायदा कर रहा है जो व्यक्तिगत प्रत्याशी के लिए होगा और साथ ही उनके स्पॉन्सर्स के लिए भी। 19 नवंबर से लागू होने वाले ये बदलाव विशेषज्ञों, घरेलू और धार्मिक वर्कर्स के लिए होंगे जो एक अल्पावधि के लिए काम के लिए ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं। तो अब इसी पर एक रिपोर्ट। नया टेम्परेरी एक्टिविटी वीजा फ्रेमवर्क 7 पुराने वीजा सब क्लासेस को हटाकर नए 4 सब क्लासेस को लागू करेगा। इन नए वीजा में अल्पावधि के लिए विशिष्ट क्षेत्र में अस्थायी कार्य या शैक्षिक यानी ट्रेनिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्षेत्र शामिल होंगे। ये प्रस्तावित बदलाव 2014 के डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन द्वारा किए गए स्किल्ड माइग्रेशन और टेम्परेरी एक्टिविटी रिव्यू का परिणाम है। डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मिनिस्टर एलेक्स हॉक का कहना है कि ये सुधार हर तरह से फायदेमंद हैं और संचालन को आसान बनाते हैं।
Simple visa products for applicants, businesses and other organisations. There's a flat rate visa application charge, so that's a good innovation. There'll just be a $275 charge across any of those activity areas. That means a reduction of about $100 on the current system.
अब से हर वीजा एप्लीकेशन कागज पे नहीं बल्कि इमी अकाउंट ऑनलाइन पर रहेगी।
It will be simpler. In theory, the applications will all be online and therefore be able to be done in a more expeditious manner, especially where they're compliant. And we're confident, I think this will mean a faster and more efficient visa system in general.
और इस कदम का मेलबर्न में माइग्रेशन एजेंट जॉन अंगर ने स्वागत किया है।
The fact that all applicants for subclass 400 visas will be able to lodge electronically, that's good news, say, if a business urgently needs help from a skilled person in China or India. It promises to be a significant improvement.
नया subclass visa category short-term workers को लक्षित करता है, जो विशिष्ट काम के लिए हैं और उनका काम ऑस्ट्रेलिया के फायदे के लिए है।
An example of a recent set of 400 visas that my company assisted with was for specialist technicians in the construction of a new public aquarium in Cairns. The technicians who needed 400 visas all came from the United States. The applications could be lodged online, and the visas were granted in a matter of days.
Subclass 408 visa category mein exchange, sports, dharmik aur gharelu workers aate hain. Entertainers, researchers, और सुपर यॉट क्रू भी इसी वीजा के अंदर आएंगे और अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और सरकार द्वारा फंड की गई इवेंट्स के लिए फीस में भी विशेष कंसेशन रहेगा।
Some of the current things an organization has to do to sponsor a religious worker, for example, will be still the same. But if we look at some of the differences, once the changes come into effect, the process will be much less complicated if a person is outside Australia and is needed in Australia for less than 3 months. In these circumstances, a nomination by a sponsor will not be required. And this is one of the changes I think most people will find most beneficial.
वर्तमान के वीजा क्लास 402 की जगह अब होगा सब क्लास 407 जो ट्रेनिंग वीजा कैटेगरी का होगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो अस्थायी तौर पर ट्रेनिंग या विशिष्ट क्षेत्र में विकास पर केंद्रित होंगे। सब क्लास 407 वीजा एप्लीकेशन के लिए नॉमिनेशन चाहिए होगा और स्पॉन्सर भी, चाहे वो कितनी भी लंबी अवधि के लिए आ रहे हों।
Universities typically use the 400 series visas in two ways. First, for postgraduate students or students enrolled in universities overseas who need to complete some additional study for their degrees. And second, the 400 series is used for visiting academics who, for example, may want to come to Australia to participate in research. Under the existing framework, a 402 training and research visa is used for both these purposes. Once the changes take effect, however, universities will use a new 407 training visa for the postgraduates and the new 408 temporary activity visa for the visiting academics.
سب کلاس 403 ٹیمپریری ورک ویزا ان کے لیے ہے جو دوئی پکشی سمجھوتے کے تحت کام کر رہے ہیں, کوئی ودیشی بھاشا پڑھا رہے ہیں یا کسی ڈپلومیٹ کے لیے گھریلو کام کر رہے ہیں یا کسی سیزنل ورکر پروگرام میں بھاگ لے رہے ہیں. امپلائر کو ایک ہی اسپانسرشپ اپلیکیشن چاہیے ہوگی, چاہے وہ ٹریننگ کی ہو, ریسرچ ہو, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو, انٹرٹینمنٹ, سوشل پروگرام یا یوچ کرو ہو.
If an organization was approved before 19 November when these changes take effect, let's say a long stay activity sponsor or a training and research sponsor or one of the other sponsor types, they'll still be able to use that approval to sponsor visas during the transition period or until the approval ceases. Now the transition period will go to May 2017. And then they would need to think about applying again online.
ایلیکس ہاگ بتاتے ہیں کہ 19 نومبر سے پہلے کی اپلیکیشنز پرانے لیجسلیشن پر ہی پروسیس کی جائیں گی.
Well, the government intends that, you know, when this comes into effect on 19 November, all future applications will be online. Current applications will be unaffected. They'll be assessed normally. And the transition to the new system is being updated by the department on its website. And people will be encouraged to lodge online.
19 نومبر 2016 سے 18 مئی 2017 تک اسپانسرشپ, نومینیشن اور ویزا اپلیکیشن کے لیے ایک ٹرانزیشن سمے رہے گا. ادھک جانکاری کے لیے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اور بارڈر پروٹیکشن کی ویب سائٹ پر جائیں, www.border.gov.au/trav/work/temporary-activity-visa-changes.